Hare Rama. हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत जो इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है, ऐसे अद्भुत ग्रंथ की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी आज से हम भगवान की मथुरा लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। वैसे तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, भगवान के जन्म और कर्म अनेक हैं। गीता में भगवान ने कहा भी है कि हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, हालांकि इसे समझना बहुत मुश्किल है, परंतु यदि कोई मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है। यहां जानने का अर्थ यही नहीं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, फिर गोकुल गए, फिर से मथुरा, फिर द्वारका। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्व से जानना। यदि भगवान के जन्म और कर्मों को हम तत्व से जानते हैं तो फिर से इस संसार में कभी वापस नहीं आना पड़ता है। त्यक्त्वा देहम, इस देह को त्याग कर न पुनर्भवम इति, व्यक्ति को इस पुनर्भवम, इस संसार में पुनः वापस नहीं आना पड़ता है। प्राय आप सब जानते हो इस संसार में सब लोग दुखी हैं, सब लोग सुख की खोज में हैं, बहुत बहुत मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी सुख नहीं मिलता है। बताइए जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु जो सुख हम चाहते हैं वह सुख हमें मिलता नहीं। वायलिन का आवाज थोड़ा कम करो। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं और सुख इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि सब लोग दुखी हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माता के गर्भ में आना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, ये बहुत बड़ा दुख है। और ऐसे दुख रूपी संसार को छोड़कर भगवत धाम को यदि प्राप्त करना है तो निश्चित उस भगवान के बारे में हमें जानना होगा। जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक न तो हम सुखी हो सकते हैं, न तो भगवान के धाम में जा सकते हैं, न तो हम पवित्र हो सकते हैं। पवित्र कृष्ण कथा जो है हमारे हृदय को पवित्र करने वाली है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है प्रविष्ट कर्ण रंग्रेण शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही बदराणी विदु नोति सुहत सताम। कृष्ण कथा जब हम हमारे कर्ण से सुनते हैं तो उस कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ही हमारे कान के द्वारा हृदय में आते हैं, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। कथा के द्वारा कान के माध्यम से कृष्ण प्रविष्ट कर्ण रंग्रेण कर्ण के माध्यम से हृदय में आते हैं, और कृष्ण जब हृदय में आते हैं तो उनका प्रथम काम क्या होता है? भागवत चाहे गीता में कृष्ण के विषय में आया है पवित्रम परमम भवान, कृष्ण जो है बहुत पवित्र है। पवित्र माने शुद्ध, और कृष्ण को अशुद्धता पसंद नहीं है, गंदगी पसंद नहीं है। और हमारे हृदय में बहुत प्रकार की गंदगी है, मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य। बताइए जो व्यक्ति शुद्ध होता है कोई नए घर में रहने के लिए जाता है, वह घर 10 साल से बंद है, बहुत मिट्टी है, धूल है। यदि वह व्यक्ति शुद्ध होगा तो सबसे पहले कौन सा कार्य करेगा? उस घर में जाने से पहले सबसे पहला कार्य कौन सा होगा? उस घर को धोएगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत शुद्ध है और हमारा हृदय अशुद्ध है, अपवित्र है, मैल से भरा हुआ है। परंतु जब हम भगवत कथा सुनते हैं तो कान के माध्यम से कृष्ण हृदय में आते हैं, और हृदय में आकर कृष्ण का सबसे पहला काम क्या होता है? इस हृदय को धोना। क्योंकि कृष्ण को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए कृष्ण हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। शुद्ध गोस्वामी यहां तक कहते हैं, कृष्ण हमारे हृदय को धोते नहीं है, विदु नोति सुहत सताम। धोना कुछ अलग होता है और विदु नोति का अर्थ होता है विशेष रूप से धोना, पता है ना? धोने धोने में अंतर होता है। और ये कम कीजिए, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
विदु नोति, धोने धोने में अंतर होता है, आप लोगों को पता होगा। हमारे पुराने जमाने के बुजुर्ग और खास करके गांव में रहने वाले जब अपना घर धोते हैं तो बिल्कुल साफ सफाई करके धोते हैं, और आज की लड़कियां घर धोना भी नहीं जानती। तो भगवान श्री कृष्ण हृदय को धोते हैं कैसे? विदु नोति, पूरा पूरा साफ कर देते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है, जीवन में सुख और शांति आ जाती है, और मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? शुणवताम स्वकथा कृष्णम, कृष्ण की कथा सुननी होगी। कृष्ण कथा सुनने से ही हृदय पवित्र होता है। तो आइए कृष्ण कथा को हम प्रारंभ करें। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं और भगवान की कथा भी अनंत है। भगवान की कथा समुद्र के समान विशाल है, और अब तक मैं कंफ्यूज हूं कहां से हाथ डालूं, कहां से शुरू करूं। परंतु समुद्र में कहीं भी आप ग्लास भर लो तो कहीं से भी उठा लो, सब समान ही होता है। इष्ट देव प्रभु कह रहे थे, गन्ने को कहीं से भी काट कर आप खाओगे तो वो मीठा ही लगेगा, मधुर लगेगा। वैसे कृष्ण कथा जो है परम मधुर है, और इस कथा को पूर्ण कर पाना, पूर्ण पूर्ण रूप से बताना, ये किसी के बस की बात नहीं है। साक्षात अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत काल से भगवान के गुणगान गा रहे हैं, परंतु उसे शेष नहीं कर पाए। शेष दिनेश गणेश महेश, सुर सेहु जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारी पुनीतव पार न पावे। एक से एक लोग भगवत कथा की चर्चा करते हैं परंतु पार नहीं पा सकते। भगवान की कथा अनंत और विशाल है, परंतु हम प्रारंभ करते हैं मथुरा से। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और जन्म लेने के बाद तुरंत वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए। परीक्षित महाराज ने जब कृष्ण कथा सुनने की जिज्ञासा की तो उस जिज्ञासा में एक प्रश्न यह भी था कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप बताइए, कस्मान मुकुंद भगवान पितृ गेहात व्रजम ग्रतः, ये भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर तुरंत अपने पिता को छोड़कर गोकुल क्यों चले गए? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा होगा, डर गए होंगे कंस से। परंतु परीक्षित तो भगवान के परम भक्त थे, वे जानते थे सुखदेव गोस्वामी वो डरने वालों में से नहीं है। कस्मान मुकुंद भगवान, वह मुकुंद है, मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो संसार के लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो संसार के लोगों को निर्भय बनाते हैं, संसार के लोगों को अभय प्रदान करते हैं, ऐसे गोविंद कभी किसी से डर नहीं सकते। कारण बताइए। तो कृष्ण मथुरा से गोकुल गए और गोकुल में नंद बाबा यशोदा के सानिध्य में 11.5 वर्ष तक रहे। मेरा आवाज भी थोड़ा कम कर दो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
11.5 वर्ष तक कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के सानिध्य में गोकुल में रहे। और एक दिन की बात, नारद मुनि कंस के पास आए। कंस बहुत चिंतित था क्योंकि कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत असुरों को भेजा। कृष्ण के जन्म के 6 दिन के बाद 6ठे दिन कंस ने पूतना को भेजा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रज आदिशु। आई थी पूतना गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए और जन्म से राक्षसी थी। और पूतना का काम क्या था? बच्चों का अपहरण कर लेना और उस बच्चों के मांस और रुधिर को खा पी जाना। तो कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा कहने पर बालकों का वध करने वाली पूतना ब्रज गोकुल में आई और गोकुल में आकर वह पूतना सीधी सीधी नंद बाबा के घर पर जा रही है। नंद बाबा के घर जाकर, उस दिन नंद बाबा मथुरा गए थे, रोहिणी और यशोदा घर पर थी और पूतना बहुत सुंदर रूप बनाकर आई थी। भागवत में वर्णन है, पूतना बहुत सुंदर गोपी ड्रेस पहनकर, गोपियों का वस्त्र धारण किया था, बाल में मालती के फूल थे, गले में कंठी, भाल में तिलक था और हाथ में कमल लेकर गोकुल में प्रवेश की। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस समय गोकुल में रहने वाले सभी ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि साक्षात लक्ष्मी देवी नारायण को मिलने जा रही है। पूतना जैसी राक्षसी को ब्रजवासी लक्ष्मी देवी समझ बैठे। स्थान स्थान पर हमारे आचार्यों ने हमें समझने के लिए उपदेश दिए हैं और उसे सुनना बहुत आवश्यक है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, देखिए भगवान के शुद्ध भक्तों का स्वभाव देखिए। ये पूतना नाम की राक्षसी गोकुल में आई है तो ब्रज में रहने वाले जो शुद्ध भक्त हैं पूतना को लक्ष्मी समझ रहे हैं। वास्तव में जिसका हृदय पवित्र होता है, जो शुद्ध होता है, उसे जगत में सब लोग शुद्ध दिखते हैं। जो अच्छा होता है ना, संसार में उसे सब लोग अच्छे दिखते हैं। और जिसके हृदय में बुराई है, जिसके हृदय में दोष है, तो उसे जगत में रहने वाले सभी लोग दोषी दिखेंगे। ब्रज में सब लोग शुद्ध भक्त थे, इसलिए पूतना को भी शुद्ध भक्त मान बैठे। आप सबको पता होगा भागवत के 11वें स्कंद में नव योगेश्वर निमि महाराज के यज्ञ में गए और निमि महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा था वैसे 9 प्रश्न पूछे थे, उनमें दूसरा प्रश्न था कि भगवान का शुद्ध भक्त कैसा होता है। तब हरि ऋषि ने उत्तर दिया, सर्वभूतेषु यः पश्येत भगवत भावम आत्मन, भूतानि भगवत आत्मानि, यह भागवत उत्तम। सबसे बड़ा उत्तम भक्त, शुद्ध भक्त कौन है? जो सभी लोगों के हृदय में भगवान को देखता है। सर्वभूतेषु यह पश्येत, सबके हृदय में भगवान को देखता है। भगवान सबके हृदय में है, और सबके हृदय में भगवान को देखकर और जितनी भी बातें हैं सब उपलक्षण में समझ लेनी चाहिए कि यदि आपको किसी में भगवान दिख गए तो उसमें कभी दोष नहीं देख सकते हैं, कभी उसे ईर्ष्या नहीं होगी, और हर वक्त हम उसे प्रणाम करेंगे, उनके गुणगान करेंगे। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो दूसरों का गुणगान करते हैं, दूसरों में दोष नहीं देखते हैं। वास्तव में दूसरों में दोष देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो साधारण नहीं है। बताइए, मंदिर किसे कहते हैं? मंदिर किसे कहते हैं? जहां पर भगवान हो उसे मंदिर कहते हैं। तब बताइए, इस देह में, इस मनुष्य के शरीर में क्या भगवान नहीं है? तो ये 25 तत्वों से बना हुआ यह देह भगवान का एक मंदिर है। और कभी कभी हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, और वहां पर बहुत पुराने से पुराने मंदिर हैं, 5,000 वर्ष पुराने मंदिर हैं, जो खंडित हो चुके हैं, टूट गए हैं। तो क्या उस मंदिर को देखकर हम हीन दृष्टि करते हैं? क्या हम ऐसा कहते हैं ये मंदिर अच्छा नहीं है? अरे, आज तो मंदिर जितना पुराना हो उतना अच्छा लगता है, ऐतिहासिक। तो उस मंदिर के प्रति हम कोई दोष दृष्टि नहीं करते हैं, कोई हीन भावना नहीं करते हैं, तो फिर संसार के लोगों के प्रति क्यों दोष दृष्टि करते हैं? क्योंकि मनुष्य का शरीर भी भगवान का एक मंदिर है, यह समझकर हमें किसी में दोष नहीं देखने चाहिए। प्रायः दूसरों का दोष देखना होता है तो हमें 1,000 जीवा मिल जाती हैं, हम शेष नाग हो जाते हैं दूसरों का दोष गाने में। और माला जपनी होती है तो एक जीवा है वह भी बंद हो जाती है। दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। जो महापुरुष होते हैं, जो महात्मा होते हैं, देवी सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्महत्या करते समय बहुत सुंदर बात कहती हैं। इस संसार में 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं जो दूसरों के गुण में भी दोष देखते हैं, पता है ना? कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा बोले, कितना भी अच्छा काम करे, परंतु कहीं ना कहीं दोष देखे। अभी भी कुछ सोच रहे होंगे, ये दिया यहां रखा होता तो अच्छा था, ये मंदिर वहां होता तो अच्छा था, ये व्यासपीठ यहां होता तो अच्छा था। बस दोष देखने के लिए ही आते हैं, गुणों में भी दोष देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये पहली प्रकार के भक्त हैं, मतलब थर्ड क्लास के भक्त। सेकंड कैटेगरी के भक्त कैसे हैं? जो दूसरों के गुण में गुण देखते हैं और दोष में दोष देखते हैं, यथावत। परंतु अव्वल नंबर के भक्त, जिसे महात्मा कहा जाता है, वे कैसे होते हैं? जो दूसरों के दोष में भी गुण देखें उसे महात्मा कहा जाता है। बहुली करिष्यति, जो दूसरों के थोड़ा सा, यदि किसी व्यक्ति में थोड़ा सा भी गुण दिख गया तो उस थोड़े से गुण को लेकर उस गुण को महान करके प्रकट करते हैं, उसे महात्मा कहते हैं। ये है महात्मा की व्याख्या। ब्रज वृंदावन में ऐसे ही शुद्ध भक्त रहते थे। पूतना जैसी ही राक्षसी को देखकर भी यही सोच रहे थे कि साक्षात लक्ष्मी देवी आ रही है। देवी लक्ष्मी आई, सॉरी पूतना आई और यशोदा के आंगन में प्रवेश की। यशोदा अपने आप को सौभाग्यशाली समझी और पूतना ने कहा कि मुझे आपके लाला को थोड़ा खिलाना है। बोले कोई बात नहीं, पलने में सोया है और हम लोग रसोई घर में जा रही है हमारा काम करने के लिए, हमारे लाला का ध्यान रखना। पूतना गई, कृष्ण को उठाया, कृष्ण जाना नहीं चाहते थे। पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब कृष्ण ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, इसके 22 भाव है अलग अलग आचार्यों ने, अनेक भाव है, परंतु कुछ भाव दो तीन में आपको कह दूं। कृष्ण ने सोचा कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और ओपनिंग में ही स्त्री आ रही है। अब ये स्त्री से क्या ओपनिंग करना है? मारना तो है ही, परंतु स्त्रियों को क्या मारना है? और कृष्ण समझ गए थे कि अपने स्तन पर विष लगाकर आई है मुझे मारने के लिए, तो अपनी आंखें बंद कर ली, यदि वापस चली जाए तो अच्छा है। एक आचार्य कहते हैं पूतना को देखकर कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान करने लगे, भोलेनाथ आपके लिए भोजन आ रहा है। मैं तो ब्रज का छोटा सा लाला हूं, मैं मक्खन दूध पीने वाला, मक्खन खाने वाला, ये विष खाने का काम भोलेनाथ आपका है, और आपको तो समुद्र मंथन से प्रैक्टिस हो गई है, तो आपके लायक भोजन आया है, आप आ जाइए और स्वीकार कीजिए। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। हरीशूरी जी एक बहुत सुंदर भाव देते हैं, कृष्ण ने सोचा कि ये पूतना आ रही है विष पिलाने के लिए, और यदि हम दूषित भोजन करते हैं तो रोग हो जाता है ना। माताएं अक्सर अपने पुत्र को कहते हैं बाहर का मत खाओ, रोग हो जाएगा। कृष्ण ने सोचा कि आज तक घर का खाया हूं, आज ये बाहर का खिलाने आई है और आगे चलकर रोग लग जाएगा। परंतु कितना भी बड़ा से बड़ा रोग हो वह योग से ठीक हो जाता है, योगा से। करते ना रामदेव बाबा का फॉलोअर बहुत सारे हैं, कर लेना चाहिए कभी कभी शरीर को ठीक रखने के लिए। तो कितना भी बड़ा रोग योग से ठीक हो जाता है। तो कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर रोग होने वाला है, इसलिए अभी से ही कपालभाति करने लगूं या अनुलोम विलोम करने लगूं। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। तो इस प्रकार से बहुत सारे भाव आचार्यों ने दिए हैं, परंतु हम तो कोई और कथा करने वाले हैं क्योंकि ये सब कथा हो चुकी है। आई पूतना और कृष्ण को उठाया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जैसे कोई म्यान सहित तलवार को उठा लेता है, वैसे कृष्ण को पूतना ने उठा लिया। कहने का भाव यही है कि कृष्ण बाहर से बहुत भोले लग रहे थे, जैसे तलवार जब म्यान में होती है तो बाहर से मखमल की दिखती है, परंतु जब अंदर से निकलती है तब चमचमाती हुई धार होती है उसकी। कृष्ण को एक भोला बालक समझकर पूतना ने उठा लिया, परंतु वह जानती नहीं थी कि मैं मेरे काल को उठा रही हूं। उठाया कृष्ण को और अपने स्तन से वो विष लगाकर आई थी, कृष्ण को पिलाने लगी। कृष्ण पीना नहीं चाहते, जबरदस्ती कृष्ण के मुख में अपना स्तन रख दिया। और अब इतनी जबरदस्ती कोई करे और कृष्ण न पिए, कृष्ण ने पी लिया। श्रीपाद वल्लभाचार्य बहुत सुंदर बात कहते हैं, कृष्ण ने पूतना के दूध को क्या पिया, कृष्ण ने हजारों लोगों को मुक्ति प्रदान कर दी। कैसे? पूतना जब गोकुल में आई तो इसके पहले बहुत सारे बालकों को मार चुकी थी, वह पूतना बहुत सारे बालकों का प्राण पी चुकी थी, परंतु कृष्ण ने जब उनका दूध पिया तो उसके अंदर जितने बालकों का प्राण था सभी बालकों को कृष्ण ने अपने अंदर लेकर सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया, सबको मुक्त कर दिया। आइए आइए आइए। परंतु धीरे धीरे करके पुतना का दूध खाली हुआ, दूध पिए, विष पिए और इसके साथ साथ पुतना के प्राण पीने लगे। जब पुतना के प्राण पीने लगे तब पुतना आकुल व्याकुल हो गई, दुखी हो गई, दर्द होने लगा। और अब पुतना कह रही है, अरे छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन हमारे भगवान, आप अभी से तय कर लीजिए, हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है? एक तो किसी के हाथ में नहीं आते हैं। भक्त लोग 16 माला, 4 नियम पालन, एकादशी, निर्जला, न जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन हाथ में नहीं आते हैं। और जिसके हाथ में आ गए तो उसे छोड़ते नहीं है। पुतना के हाथ में आए, अब पुतना कर रही है छोड़ छोड़, परंतु ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पकड़ लिया पुतना को, बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, परंतु कृष्ण छुटे नहीं और पुतना के प्राण पीने लगे। वे अपना जो रूप बनाकर आई थी वह टिकाकर नहीं रख सकी और रूप धीरे धीरे बड़ा होता गया। पुतना उस घर से निकल गई और दौड़कर बगीचे में चली गई और उसी समय पुतना का प्राण भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया और कृष्ण ने पुतना को अपने धाम में मातृ गति प्रदान कर दी। उद्धव जी इस बात को कहते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम झिंगा सयापा यत अपि असाधवी लेवे गतिम दात्री उचिताम ततोव्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो पुतना अपने स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आई थी, स्पेशल कृष्ण को मारने के लिए आई थी, परंतु कृष्ण ने उस पुतना को भी अपने धाम में भेज दिया और अपने धाम में पुतना को अपनी मां बना दिया। बताइए इस संसार में इससे बड़ा कृपालु कौन हो सकता है? मारने की बात छोड़ दीजिए, कोई गाली भी दे देता है ना, जीवन भर भूलते नहीं है हम, साले इसने गाली दिया था मुझे, कभी आने दो उसे। किसी ने एक बार गाली भी दे दिया उसे जीवन भर नहीं भूल पाते हैं, और ये तो मारने के लिए आई थी, भगवान ने मां बना दी, अपने धाम में भेज दिया। इससे बड़े कृपालु कम बात कहां मिलेंगे। इसलिए कहने वाले ने कहा है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, वास्तव में करुणा के सागर है, कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन भागवत में यह प्रश्न उठा, पुतना ने न जाने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे भगवान ने उसे अपने धाम में भेज दिया और उसके साथ अपनी मां बना लिया। वैसे तो पुतना ने और कुछ नहीं किया था, पुतना का भाव भी ठीक नहीं था। भाव क्या था? कृष्ण को मारना। उसका कार्य भी ठीक नहीं था, बस पुतना के दो गुण को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने धाम में भेज दिया और अपनी मां बना ली। वो गुण क्या था? पहला गुण, भगवान ने सोचा कि ये कैसी भी है, चलो मुझे मारने के लिए आई है, परंतु बिचारी चलकर मेरे मंदिर में, मेरे घर पर आई है, तो जो लोग मेरे मंदिर में आते हैं उसका उद्धार मैं निश्चित करता हूं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में जाते हैं तो हमारा भाव ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं, चलेगा? आप यहां मंदिर में कृष्ण को मारने के लिए तो नहीं आते हो ना? वो तो मारने के लिए गई थी। किसी भी भाव, कुभाव अलख आलस हूं, किसी भी भाव से यदि आप मंदिर जाओगे तो निश्चित भगवान आपको अपना धाम प्रदान करेंगे। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, हमारे इष्टदेव प्रभु बहुत प्रचार करते होंगे, लेकिन प्राय लोगों का यही कहना होगा कि सिटी से बहुत दूर है। अरे बिचारी पुतना मथुरा से गोकुल गई थी, आप 4 किलोमीटर नहीं आ सकते हो यहां? हम तो देखिए राक्षसी से भी गए गुजरे हैं, और राक्षसी होते हुए भी मथुरा से चलकर गोकुल गई थी, और हम लोग अपने आप को सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन मनुष्य मानते हैं, भगवान की कृपा से गाड़ी है, मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा की सुविधा है, और कुछ न हो तो लिफ्ट, धोती कुर्ता पहनकर लिफ्ट मांगेंगे मुफ्त में पहुंच जाएंगे। भक्तों के ऊपर तो लोग कृपा करते ही रहते हैं, जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मन चंगा तो कथोटी में गंगा, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान घर पर ही तो है, कहते हैं ना प्रभु जी कुछ लोग। परंतु चंगा मन कैसे होता है ये तो जान लीजिए। एक बार एक राजा को भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हुई कि बस अब भगवान को प्राप्त करना है। पूछा, भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? बोले, वन में जाना पड़ेगा, जब तक वृंदावन मंदिर में नहीं जाओगे भगवान नहीं मिलेगा। राजा ने कह दिया, बस कल सुबह मैं राज्य त्याग कर, सब कुछ त्याग कर मैं वन में चला जाऊंगा, मंदिर में भगवान का भजन करूंगा। लेकिन दूसरा दिन हुआ, दो तीन मंत्रियों ने राजा के कान भरे, बोले राजन मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब जगह पर है, घर पे भी है, घर पे बैठकर भजन करो। राजा ने अपना प्लान चेंज कर दिया। कुछ लोग को सोचते होंगे शनिवार को कि रविवार को हम जाएंगे राधा दामोदर मंदिर में, परंतु सुबह सुबह टीवी और सब देखने में रह जाते हैं कि चलो अब नहीं जाएंगे, प्लान चेंज। राजा ने अपना प्लान चेंज कर दिया कि अब नहीं जाना, अब घर पे बैठकर करेंगे। लेकिन यह बात एक संत को पता चली और वह संत उठहारे का रूप लेकर, उठहारा माने ऊंट बेचने वाला, उठहारे का रूप लेकर उस राजा के राज्य में आया और राजा के राज्य में सभी लोगों के घर पे जा जाकर बेल बजाकर नोक करके, और घर वाले खोलते थे, बोले क्या है, बोले आपने मेरे ऊंट को देखा, बोले आपका ऊंट हमारे घर पर क्या करेगा, बोले खो गया है, बोले जरा दरवाजा तो देखो, कहां आपका इतना बड़ा ऊंट और कहां हमारा दरवाजा, बोले क्षमा कीजिए, दूसरे घर पर गया, नोक किया, दरवाजा खोला, बोले आपने हमारे ऊंट को देखा, बोले दरवाजा तो देखो कम से कम, फिर आप बेल बजाओ। पूरे राज्य में और पूरे राज्य में सबके नाक में दम हो गया कि ये बहुत परेशान कर रहा है। सब लोग राजा को कंप्लेंट किए और राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर उस उठारे को बुलाया, सभा में खड़ा रखा ताकि ए क्यों सबको परेशान कर रहे हो, बोले मैं परेशान कहां कर रहा हूं, मैं तो मेरे ऊंट को ढूंढ रहा हूं। बोले तुम जानते नहीं हो तुम्हारा ऊंट किसी के घर पर कैसे जा सकता है, ऊंट की गर्दन कितनी लंबी होती है, पांव कितने लंबे होते हैं, ये ऊंट किसी के घर पर कैसे जा सकता है, घर पर क्यों ढूंढ रहे हो। ऊंट हारे ने कहा, राजन यही समझाने के लिए आया हूं, ये सृष्टि का छोटा सा जीव ऊंट जब किसी के घर पे नहीं रह सकता है तो यह विभु भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति आप जैसे थर्ड क्लास लोगों के घर पर कैसे रह सकते हैं, निकलो घर से, ढूंढो भगवान को और मंदिर में जाकर भगवान की कृपा को प्राप्त करो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राजा निकल गए घर छोड़कर, परंतु हम लोग तो इतने स्ट्रांग है कि ऐसे एक नहीं प्रभु जी 100 दृष्टांत सुनाओ फिर भी नहीं निकलेंगे। व्रत लेकर बैठे हैं, जैसे लोगों का व्रत होता है ना, भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि विष्णु की भक्ति क्यों कर रहा है, प्रहलाद ने कहा पिताजी विष्णु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, यदि विष्णु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है तो सब लोग करने चाहिए, सब लोग भक्त होने चाहिए, सब लोग क्यों नहीं करते हैं। बोले पिताजी क्या कहूं, मतीन कृष्णे परत स्वतोवा मिथो भी पद्यत गृह व्रता नाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणा नाम। मैं क्या बताऊं, सब लोग की मति भगवान में लग सकती है परंतु सब लोग व्रत लेकर बैठे हैं, उस व्रत का नाम क्या है, व्रत तो बहुत होते हैं, एकादशी व्रत और भी बहुत सारे आपके गांव में होते होंगे व्रत, जया पार्वती व्रत है? तो ये लोग संसार के गृह व्रत लेकर बैठे हैं, गृह व्रत, बस गृह में ही रहेंगे, गृह को कभी छोड़ेंगे नहीं, जीना यहां मरना यहां, गाते भी हैं। जो लोग गृह व्रत लेकर बैठे हैं उसे कभी भगवान नहीं मिल सकते हैं, घर से निकलना होगा। तो पूतना गई थी भगवान के पास, चलकर गई, इसलिए भगवान ने पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। और दूसरा गुण पूतना में क्या था, पूतना का भाव अच्छा नहीं था, कृष्ण को मारने के लिए गई थी, परंतु पूतना ने जो वस्त्र पहना था अद्भुत वस्त्र, गले में तुलसी की कंठी और बाल में ऊर्ध्वपुंड तिलक, भगवान ने सोचा चलो भाव नहीं है कम से कम वस्त्र तो अच्छा पहना है, गले में कंठी है और तिलक है, यह सोचकर भगवान ने उसे अपने धाम में भेज दिया। मित्रों, हम भी यदि वैष्णव आभूषण धारण करते हैं तो निश्चित भगवान हमें स्वीकार करते हैं, इसलिए वैष्णव आभूषण, गले में कंठी। कुछ लोग कहते हैं आप लोग कंठी क्यों पहनते हैं, चलो पहनो लेकिन इतनी टाइट क्यों पहनते हैं, ऐसा पूछते होंगे, है ना? तो मैं तो सीधा उत्तर देता हूं कि आप बोलते हो कंठी इतना टाइट क्यों पहनते हैं, कंठी का अर्थ क्या होता है, कंठी का अर्थ होता है जो कंठ पे पहना जाए उसे कंठी कहते हैं। अब आप चाहते हो कि इसे नाभि पर पहने तो ये तो फिर वो नाभि हो जाएगी, वह कंठी नहीं रहेगी। कंठी को कंठ पर धारण करते हैं, क्यों, क्योंकि कंठ से जो भी अंदर जाता है वह इस तुलसी से स्पर्श होकर जाएगा और जो भी निकलता है वह तुलसी से स्पर्श होकर निकलता है, और तुलसी को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बिना तुलसी के भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे भोग हो प्रसाद हो, भोग में आप तुलसी नहीं डालोगे तब तक भगवान उसके सामने देखेंगे भी नहीं, और हमारे सामने भी जब तक तुलसी नहीं पहनेंगे तब तक भगवान, इसलिए तुलसी धारण करना और गोपी चंदन मस्तक पर तिलक, हम जो तिलक करते हैं ये कोई शो का तिलक नहीं है, एक शास्त्रीय प्रमाणित तिलक है। आज तो संसार में लोग तिलक नहीं अपना सिंबल लोगो लगाते हैं अपनी बुद्धि से, किसी ने अलग बना दिया, किसी ने क्या बनाया, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया है एक वैदिक वेद उपयुक्त तिलक है। हमारे इस तिलक का नाम ऊर्ध्वपुंड तिलक है, ये तिलक का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भगवान विष्णु के चरण है, और तिलक का ये भाग जो है वह तुलसी दल है। और यह भी कहते हैं कि तिलक में जो ये दो डंडी दिख रही है ये ब्रह्मा और शिवजी है और बीच में भगवान विष्णु है, इस प्रकार ये हमारा तिलक है। वैसे यह तिलक आध्यात्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, भौतिक दृष्टि से भी आज के वैज्ञानिकों ने भी यह साबित किया है तिलक करने से शांति रहती है। आप सब जानते होंगे हमारे शरीर में अनेक नस है, नस, और साइंटिस्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर में छोटी छोटी नसों को यदि खोला जाए और लंबा किया जाए तो ये पूरे पृथ्वी का चक्कर काट लेगी, इतनी नसें हैं एक व्यक्ति के शरीर में। और ये सभी नसों का जंक्शन कहां पर है, यहां पर भ्रिकुटी पर। इसलिए आप कभी देखोगे कभी बहुत सोचते हो टेंशन लेते हो तो दर्द यहां होता है, है ना, मस्तक में, क्योंकि ये जंक्शन है, यहां पर ही ट्रैफिक जाम होती है, चाहे बस की या ट्रेन की, जंक्शन यहां पर है। इसलिए आप गोपी चंदन यहां पर धारण करते हो तो वो नस जो है शांत हो जाती है, शांति मिलती है पूरे शरीर में, और इसके साथ आध्यात्मिक प्रभाव भी मिलता है। पद्म पुराण में कथा है एक बार एक व्यक्ति बहुत पाप किया था और एक दिन एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में गिर गया, यमराज जी के 3 दूत आए उसे लेने के लिए, क्योंकि जो पाप करते हैं उसे लेने के लिए यमराज जी आते हैं। परंतु उसी समय एक कौवा उसके ऊपर से उड़कर गया। कौवे का स्वभाव तो आप जानते हैं ना, वो देखता नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा, ये गांधी जी का स्टेच्यू है तो यहां पर नहीं करना है, हैं? वे तो कुछ भी हो, चाहे विवेकानंद हो गांधी जी हो, वो कुछ देखता नहीं है। तो कौवा ऊपर से गया और मल छोड़ा, सौभाग्य से उस व्यक्ति के कपाल पर वो गिरा और यमराज जी के दूत दूर से आए और दूर से देखिए, अरे बाप रे, ये तो इस कौन का है, भागो भागो यहां से लौटो वापस। सत्य घटना पद्म पुराण प्रमाण है, क्योंकि यमराज जी के वहां पर वारंट निकलता है ना, ये यमदूत अपनी बुद्धि से लेने नहीं आते हैं, यमराज जी के वहां पहले वारंट निकलता है और उस वारंट में कुछ भी लिखा हो लेकिन अंत में तीन नोट साफ साफ लिखा है, संस्कृत में लिखा है, जीवहान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम् चेतस्य न स्मरति तत चरणार विंदम कृष्णाय न नमति यत शिर एकदापि तान आनय। वारंट में क्या लिखा होता है, जीवहान न वक्ति, जो अपनी जीवा से भगवान का नाम नहीं लेते हैं ऐसे लोगों को पकड़ कर लाओ, यहां बहुत पीटेंगे। दूसरा, चलो जीवा यदि किसी की नहीं है तो जो लोग यदि भगवान के सामने झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ कर लाओ। अथवा जो व्यक्ति भगवान के गुण रूप लीला का स्मरण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को लेकर आओ। और अंत में यमराज जी कहते हैं कि कंठी और तिलक जिस पर हो ना, उसके सामने देखना भी मत, नहीं तो भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे और आपको पीटेंगे। एक बार तो कैसे भी करके बच गए, अब दूसरी बार नहीं बच सकते हो। तो कंठी और तिलक, इसलिए कंठी और तिलक 2400 घंटा धारण करना, क्योंकि मृत्यु न जाने कब आ जाए, क्या भरोसा है? और मरने के बाद भी लोग करते हैं तिलक, लेकिन क्या फायदा, अंदर से तो अंदर का जो माल मटेरियल है वो तो चला गया, जो मुख्य वस्तु है आत्मा तो चली गई। इसलिए तिलक और कंठी धारण, पूतना ये धारण करके आई थी भगवान ने अपने धाम में। तो पूतना को मारा, कंस ने पूतना को भेजा, भगवान ने पूतना को मारा, पूतना वापस नहीं पहुंची, उसकी लाश पहुंची, खैर ये तो बोलने के लिए, लेकिन लाश को भी जला दिया था। अगासुर को भेजा, उसे भी मारा, त्रिणावर को भी मारा, बकासुर को मारा, अनेक असुरों को मारा, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बहुत असुरों का वध किए भगवान कृष्ण। और असुरों के कंस बहुत बहुत लोगों को भेजा, परंतु कृष्ण मरे नहीं। इसलिए कंस चिंतित था, कब इस लड़के का क्या किया जाए, ये लड़का बना किससे है, किस मिट्टी का बना है, है? उस समय नारद जी आए, नारद जी का स्वागत किया। देखिए नारद जी एक ऐसे भक्त हैं जिसका सम्मान देवता भी करते हैं और उतना ही सम्मान असुर भी करते हैं। नारद जी आए और कंस को कहा कि प्रभु कुछ चिंता में हो? बोले हाँ। बोले उसे मारने का बहुत प्रयास किया परंतु मर नहीं रहा है। तब नारद जी ने कहा देखो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। नारद जी भी, नाम ही नारद है समझ लीजिए, क्या कहा, भागवत की स्पष्ट बात कर रहा हूं। नारद जी ने कहा कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, आपने जितने भी असुरों को भेजा, कहां भेजा, उसकी गली में ना, उसको अपनी गली में बुलाओ एक बार और फिर करक मार के देखो, तुरंत मर जाएगा। इतना कह के नारद जी तो चले गए और कंस के मन में प्लान आने लगा, अब कृष्ण को मथुरा बुलाना होगा, क्योंकि गोकुल में कितना भी प्रयास किया, ट्राई, परंतु कुछ हो नहीं रहा है। तब कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी कंस के मंत्री थे और भगवान के भक्त भी थे। कंस अक्रूर जी को बुलाए और अक्रूर जी को कहे कि देखो आपको वृंदावन जाना है। क्यों? आपको वृंदावन जाना है कृष्ण और बलराम को यहां लाने के। अक्रूर जी तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अक्रूर जी कंस के मंत्री थे। अब बेचारे मजबूरन होकर मंत्री बनना पड़ा था, वैसे कृष्ण के परम भक्त थे और रोज कृष्ण कथा सुनते थे और चाहते थे कि कृष्ण को मिलू मिलू। और एक दिन बॉस ने ही कह दिया कि कृष्ण को यहां पर लाना है और अक्रूर जी आप ही उसे लेने के लिए जाइए। होता है ना, ये अक्रूर जी की स्थिति कैसी जानते हैं? जैसे यहां पर कुछ लोग किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे ना, वैसी स्थिति है। कहीं पर नौकरी करने वाले भक्त होते हैं ना, उसकी स्थिति अक्रूर जी जैसी होती है। हृदय में भाव होता है, सोचते हैं कि प्रवचन सुनूं, मंदिर में जाऊं, परंतु नौकरी ही कुछ ऐसी होती है कि मालिक जाने नहीं देते। परंतु विचार करो, ऐसे नौकर को एक दिन मालिक बुलाए अपनी ऑफिस में और कहे कि काम करो। वैसे तो जन्माष्टमी के दिन भी हमारी फैक्ट्री शुरू है, सबको आना है, किसी को छुट्टी नहीं करना है, नहीं तो नौकरी से निकलना होगा। लेकिन उस भक्त को बुलाकर कहें इधर आओ, एक काम करो, जरा कुछ ये रुमाल के जो पार्सल है राधा दामोदर मंदिर में इष्ट देव प्रभु को देने के लिए जाने हैं, अरे काम करना, सुबह से चले जाना और फिर शाम को घर पर आना। तब सोचो वो व्यक्ति कितना खुश होता होगा। अक्रूर जी उतने खुश हुए। तो अक्रूर जी ने कंस को कहा कि आप क्यों बुलाना चाहते? कंस ने कहा देखो, मुझे आज पता चला कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब हम है ना कृष्ण को मथुरा बुलाएंगे और मथुरा बुलाकर हम ऐसा प्लान करेंगे ताकि कृष्ण मर जाए और साथ साथ उसका जो बड़ा भाई है ना उसे भी मार डालेंगे। लेकिन अक्रूर जी ने कहा क्या वो इधर आएंगे? वो गोकुल में रहने वाले कृष्ण बलराम इधर आएंगे? कंस ने कहा एक काम करो, मैं बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का आयोजन करता हूं और उसे धनुष यज्ञ के बहाने यहां लेकर आओ। बोले फिर भी मुझे संदेह लग रहा है। कंस ने कहा एक काम करो, हमारा जो सोने का रथ है ना, वो मर्सिडीज बेंज अभी अभी मैं 6 दिन पहले लेकर आया हूं शोरूम से, वो लेकर जाओ। आज की मर्सिडीज बेंज और उस समय कंस का वो सोने का रथ, और गांव में रहने वाले लड़के को क्या चाहिए? गांव में जो टोटली गांव में रहते हैं, नई गाड़ी देख ली और किसी ने कह दिया चलो हम घुमाने लेकर चलते हैं, तो ना थोड़ी ना कहेंगे, बैठ जाएंगे। कहा कि जाओ मेरा सोने का रथ लेकर जाओ, और रथ में बैठने के लिए वे दोनों तैयार हो जाएंगे और उसे जल्दी से जल्दी लेकर आओ, और यहां पर मैं धनुष यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं। अक्रूर जी प्रसन्न हुए। अक्रूर जी के हृदय में ऐसा नहीं था कि कंस कृष्ण को मार डालेगा। अक्रूर जी जानते थे कृष्ण साक्षात भगवान है, और कृष्ण यदि मथुरा आ गए तो कृष्ण के द्वारा कंस का वध हो जाएगा, कंस मारे जाएंगे, ये अक्रूर जी जानते थे। तब अक्रूर जी उस सोने के रथ पर सवार होकर गए। बहुत सुंदर, अक्रूर जी अपने मन में मनोरथ करते हुए जा रहे हैं कि मैं कृष्ण को देखूंगा, प्रणाम करूंगा, ये करूंगा। अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे। ब्रज में पहुंचते ही अक्रूर जी उस रथ से कूद पड़े, उस ब्रज भूमि में लौट गए, लेट गए और उस ब्रज रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगे, और वहां से दंडवत परिक्रमा करते करते अक्रूर जी नंद बाबा और यशोदा के घर पर आए और आकर उनका स्वागत हुआ। और उस समय कृष्ण और बलराम आए और कहा चाचा जी आप आए हो। बस कृष्ण के मुख से चाचा सुनकर अक्रूर जी को अष्ट सात्विक विकार आ गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति ने आज मुझे चाचा कहा, प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए। अक्रूर जी ने कहा कृष्ण बलराम मैं तुम्हें लेने आया हूं, कुछ दिन के लिए मथुरा चली। कृष्ण बलराम तो बाहर उस गाड़ी को देखकर ही राजी हो गए थे। नंद बाबा यशोदा का मन नहीं मान रहा था, परंतु अक्रूर जी ने समझाया और कृष्ण ने भी समझाया, देखो अब हम छोटे नहीं रहे हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं। और बलदेव जी ने समझाया, माताजी आप इतना चिंता क्यों कर रही हो, आपके इस बालक ने क्या नहीं किया है, इतने लोगों को मारा काटा। बोले लेकिन बलदेव कुछ भी हो लेकिन कृष्ण बहुत छोटा है। होता है, माता पिता को अपना लड़का छोटा ही लगता है, फिर वह 35 साल का जवान बूढ़ा भी क्यों ना हो गया हो, उसे तो छोटा ही लगता है, ये मेरा बालक है। कृष्ण और बलराम अंत में गए अक्रूर जी के साथ। अक्रूर जी के मन में दो भाव उठ रहे थे। अक्रूर जी के मन में एक भाव यह उठ रहा था कि कृष्ण साक्षात भगवान है और मथुरा पहुंचकर कृष्ण कंस को मार डालेंगे, सब लोग सुखी हो जाएंगे। ये सोचकर अक्रूर जी अपनी स्पीड बढ़ा देते थे, एक्सीलेटर के ऊपर पग दबा देते थे और रथ। लेकिन दूसरे क्षण में अक्रूर जी के मन में जब वात्सल्य भाव उमड़ता था, सोचते अरे ये तो छोटे से बालक है और न जाने कंस ने कुछ प्लान करके यदि कृष्ण के ऊपर अत्याचार किया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। ये सोचकर रथ को खड़ा रख देते थे, अब क्या करूं। अक्रूर जी बेचारे असमंजस में फंस गए। तो इस प्रकार रथ की गति चल रही है और धीरे धीरे करके अक्रूर जी के स्नान करने का समय, गायत्री करने का, स्नान करने का समय हुआ होगा। अक्रूर जी रथ से नीचे उतरे और उतरकर यमुना में स्नान करने गए। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को रथ पर बिठा कर गए, कहा कि आप दोनों रथ पर बैठो, मैं जरा स्नान करके आता हूं। अक्रूर जी जब यमुना में स्नान करने गए तो कृष्ण यमुना में अंदर नीचे स्नान कर रहे थे और यमुना के बाहर आकर देखे तो रथ के ऊपर बैठे थे। अब अक्रूर जी भी असमंजस में फंस गए, ये डबल रोल कैसे हो रहा है, बाहर भी दिख रहे हैं अंदर भी दिख रहे हैं। तब यहां से कथा प्रारंभ हम करते हैं, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 41 नंबर के अध्याय से। श्री शुक वाच, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाते हैं। श्रुवतः तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहप्य कृष्ण नट नाट्यम इव आत्मन। अक्रूर जी को उस यमुना में भी कृष्ण दिखने लगे, यमुना के बाहर भी कृष्ण का दर्शन, कैसे, जैसे नटो नाट्यम, जैसे रंग मंच पे काम करने वाला कलाकार वस्त्र बदलकर कभी यहां से आता है कभी वहां से आता है, वैसे अक्रूर जी को आभास हुआ। देवी कुंती भी इस बात को कहती हैं अपनी स्तुति में, हे प्रभु नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। हे प्रभु आप परम पुरुष हो, इस संसार के अंदर भी हो बाहर भी हो, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, आप सब जीवों के अंदर हो बाहर हो ऊपर हो नीचे हो सब जगह पर हो, परंतु दुर्भाग्य इस संसार के लोग आपको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माया जवनि काचनम ज्ञादोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। क्योंकि इस संसार के लोग माया में फंसे हैं और माया में फंसे रहने वाले लोग आपके इस नट जैसे रूप को नहीं जान सकते। भगवान इस पृथ्वी को रंगमंच बनाकर आते हैं और बहुत सुंदर रोल करते हैं। अक्रूर जी समझ नहीं पाए और स अपीच अंतरहितम विक्ष जलात उन्मज्ज सत्वर कृत्वा च आवश्यकम सर्वम विस्मित रथम आगतम। अक्रूर जी उस नदी में कृष्ण को देखे, बाहर कृष्ण को देखे, विस्मित हो गए और विस्मित होकर रथ के ऊपर आकर बैठ गए। वास्तव में ये क्या था? ये राज की बात थी जो आज मैं आपके बीच में खोलने जा रहा हूं। शायद ही आपको पता होगा, वास्तव में अक्रूर जी ने दो कृष्ण का दर्शन किया। वो अक्रूर जी को स्वप्न नहीं आया था, अक्रूर जी ने सोचा कि स्वप्न आया होगा, परंतु ये स्वप्न नहीं था, ये वास्तविक घटना थी। कृष्ण जल में भी थे और कृष्ण बाहर भी थे। क्यों? क्योंकि ब्रज वृंदावन में एक नहीं दो कृष्ण थे। जानते हैं इस बात को? सुखदेव गोस्वामी के पास समय कुछ कम होने के कारण भागवत में इस बात को क्लियर नहीं कर पाए, परंतु कवि कर्णपुर और जीव गोस्वामी आनंद वृंदावन चंपू और गोपाल चंपू में इस बात को क्लियर करते हैं कि वास्तव में कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं गोकुल में हुआ। कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से नहीं यशोदा के गर्भ से हुआ। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ और वसुदेव जी उसे लेकर यशोदा के पास छोड़कर आए और वही कृष्ण वहां रहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है, कुछ रहस्य की बात। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है इसलिए इस तत्व को समझेंगे। वास्तव में देवकी के गर्भ से जिस कृष्ण का जन्म हुआ वह कृष्ण नहीं, वह विष्णु थे। आपने कभी कृष्ण जन्म का फोटो देखा है? प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर फोटो बनाया है और भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम अद्भुतम बालक मंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाभि धायुधम। देवकी के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ वह बालक कैसा था? वह अद्भुत बालक था। उनकी चार भुजा थी, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर कौस्तुभ मणि ये धारण करके बालक जन्म लिया था। इसका अर्थ है कि वह बालक और कोई नहीं, भगवान विष्णु थे। देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया, क्योंकि उस समय युगा अवतार का समय आ चुका था, इसलिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लिए। और इस बात को दृढ़ करने के लिए देवकी का पूर्व जन्म, देवकी पूर्व जन्म में अदिति थी और वसुदेव जी कश्यप जी थे, और अदिति और कश्यप ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहिए? तब कश्यप जी और अदिति ने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। और उसके पहले जन्म में देवकी और वसुदेव प्रिष्णी और सूतपा थे, और उस जन्म में भी भगवान विष्णु की आराधना की और विष्णु से मांगा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु ने सोचा मेरे जैसा दूसरा पुत्र तो संसार में कोई है नहीं। भगवान के विषय में शास्त्र में आया है, एको एव अद्वितीय, भगवान एक ही हैं और ऐसा दूसरा कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर देवकी के गर्भ से जो भगवान प्रकट हुए तो भगवान विष्णु थे। ऐसे दूसरे शब्दों में विष्णु अंश कृष्ण कहा जाएगा। परंतु रहस्य की बात यह है कि जिस समय से देवकी गर्भवती थी उसी समय से यशोदा भी गर्भवती थी, और वसुदेव जी इस चतुर्भुज जब विष्णु प्रकट हुए तब देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना की, प्रभु आप इतना बड़ा रूप लेकर प्रकट हुए हो, इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए ताकि हम वात्सल्य भाव प्राप्त कर सके। तब उनके कहने पर भगवान ने द्विभुज रूप धारण किया और वसुदेव जी उस विष्णु अंश को लेकर गोकुल में आए। तो हम इतना ही जानते हैं कि गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था, नहीं, यशोदा ने उस समय जुड़वे संतान को जन्म दिया था, ट्विंस, और उस जुड़वे संतान में एक कन्या थी, एक पुत्र था, और जो पुत्र था वो और कोई नहीं, गोलोक धाम में रहने वाले श्याम सुंदर बजेंद्र नंदन साक्षात भगवान कृष्ण यशोदा के गर्भ से जन्म ली, और विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म ली। और वसुदेव जी जब छोड़ने के लिए आए मथुरा से, तो भगवान की योग माया से वो भगवान को नहीं देख पाए, मात्र कन्या को देख सके, और अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर वसुदेव जी चले गए। जब वसुदेव जी चले गए, तब वसुदेव जी ने जिस पुत्र को छोड़ा था विष्णु तत्व, और गोलोक धाम से आए हुए श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, ये दोनों एक हो गए, जुड़ गए। और फिर भगवान कृष्ण के रूप में वह लीला करने लगे। और इस बात को दृढ़ मैं प्रमाण देते जा रहा हूं आपको, साथ ही साथ चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण कभी किसी को मारना नहीं जानते हैं। कृष्ण कभी किसी को मारना नहीं जानते। कृष्ण कभी अपनी लाइफ में किसी को थप्पड़ भी नहीं मारे। कृष्ण मात्र प्रेम करना जानते हैं। कृष्ण मात्र प्रेम जानते हैं, वह किसी को मारना नहीं जानते। ये शास्त्र का सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो मन में तुरंत प्रश्न होगा, तो ये पूतना को, अगासुर, बकासुर, त्रिनावर्त, ये कृष्ण ने नहीं मारा तो और किसने मारा? तो क्या ये लीला गलत है या सिद्धांत गलत है? दोनों सही है, लेकिन इसको समझना होगा सही रूप से। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कृष्ण कभी किसी को काटते नहीं है, मारते नहीं है। कृष्ण मात्र प्रेम देना जानते हैं। तब ये अगासुर, बकासुर, पूतना इत्यादि को मारने वाला कौन था? तो ये दोनों कृष्ण थे, एक विष्णु तत्व कृष्ण और एक श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर जो कृष्ण थे वो तो प्रेम ही कर रहे थे, ये विष्णु तत्व जो थे वे सबको उड़ा रहे थे। सफाई करने का काम वो विष्णु तत्व कर रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रतिज्ञा है यदा यदा ही। तो यहां पर यह सिद्धांत, और इसका एक प्रमाण जो अभी हमारे सामने आया है भगवान, और एक प्रमाण यह भी है, वृंदावनम परितज्यम पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर पादम एकम, एक पाद, एक चरण भी बाहर नहीं जाते। कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं, तब तो हम सीधा सीधा यही समझेंगे ना कि अक्रूजी कृष्ण को लेकर चले गए। तो क्या ये बात गलत है कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कभी दूर नहीं जाते हैं? तो क्या अक्रूजी कृष्ण को लेकर चले गए, यह बात गलत है? दोनों बात सही है, परंतु इसे सही रूप में समझना होगा। ये बात सही है कि कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। कैसे? अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने के लिए आए थे, तब मथुरा से जो कृष्ण आए वह अक्रूर जी के साथ चले गए, और वृंदावन के जो कृष्ण थे वो वृंदावन में ही रह गए, और अक्रूर जी मथुरा वाले को लेकर मथुरा में चले। इसलिए यह सिद्धांत भी यहां सार्थक हुआ कि कृष्ण ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। पादम एकम न गच्छति, कभी भी एक कदम भी बाहर छोड़कर नहीं। और इस बात को सार्थक और साबित करने के लिए भगवान जानते थे कि लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए भगवान ने यह लीला की। क्या लीला? कि अक्रूर जी को भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हुए दिखाई दिए, और यमुना में गए तो यमुना में भी दिखाई दिए। तो यमुना में जो कृष्ण थे वह गोलोक विहारी श्याम सुंदर कृष्ण, और रथ पर जो थे वह विष्णु तत्व कृष्ण। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जन्म को इसे कहते हैं तत्व से समझना। इस प्रकार से कृष्ण के जन्म और कर्म की एक एक बात को जब हम तत्व से समझेंगे, तब हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो जब अक्रूर जी बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि अंदर भी देख रहा हूं, बाहर भी देख रहा हूं, लेकिन अक्रूर जी को सोचा कि यदि मैं ऐसे ऐसे करते रहूंगा तो ये बच्चे क्या सोचेंगे। तो जैसे कृष्ण बलराम को कुछ पता न हो, वैसे अक्रूर जी आकर रथ पर बैठ गए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तमो पृच्छद ऋषिकेशम। अक्रूर जी जब रथ पर बैठे, तब भगवान ने अक्रूर जी के साथ मजाक किया, कहा, चाचा जी, आप कुछ चिंतित लग रहे हो, क्या आपने कुछ देखा है? आगे बहुत सुंदर कह पूछ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तम परिच्छद ऋषिकेशम। ऋषिकेश ने अक्रूर जी को पूछा, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण को ऋषिकेश कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिया और ईश का अर्थ होता है स्वामी। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में सभी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। कभी कभी मन में बहुत प्रश्न उठता है, भागवत में दो बार यह प्रश्न उठाया, एक बार पुरुरवा महाराज ने और एक बार नारद मुनि ने। इस संसार में सब लोग कहते हैं कि मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, परंतु वास्तव में यह देह है किसका? अब विचार करो, मां कहती है कि यह मेरा पुत्र है, तो पिता कहता है कि मेरा पुत्र है, भाई कहता है कि यह मेरा भाई है, बहन कहती है कि ये मेरा है, मां कहती है मेरा, पिता कहता है मेरा, भाई कहता है मेरा, बहन कहती है मेरा। इतना ही नहीं, ऑफिस में जहां पर काम कर रहे हैं वह सेठ कह रहे हैं कि ये मेरा आदमी है, इस देश के नेता कहते हैं कि ये मेरी प्रजा, मेरा आदमी है, शमशान के लकड़े बोलते हैं कि ये मेरा आहार है, उड़ने वाले गिद्ध कहते हैं कि ये मेरा है, जमीन में रहने वाले कीड़े कहते हैं कि ये मेरा भोजन है, और कुछ कुत्ते सोचते हैं कि ये मेरा आहार है, कभी कभी मृत देह को कुत्ते खा जाते हैं। कुत्ते भी सोचते होंगे रास्ते में, कभी कभी कुछ लोग बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर घूमते हैं, कुत्ते सोचते होंगे भाई पहन ले पहन ले, अंत में तो मेरे मुख में ही आने वाला है, और कपड़े जो है बोले अच्छा कवर बना रहा है, पैकिंग अच्छा है इसका। तो इस प्रकार से सब लोग कहते हैं मेरा है, पत्नी कहती है कि मेरा है, और माता पिता कहते हैं मेरा है, ये बहुत बड़ी जंग है, है? पत्नी कहती है मेरा पति, और माता पिता कहते हैं मेरा पुत्र, और पति बेचारा फंस जाता है, अब किसका क्या है। सब लोग कहते हैं मेरा मेरा मेरा, आखिर ये देह है किसका? किसी ने निश्चय किया है किसका है? कोई निर्णय लिया है? क्यों लेंगे, लेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, यहां कोई कह देगा अरे हम हमारे माता पिता के हैं, पत्नी के साथ शाम को ही झगड़ा हो जाएगा, माता पिता के देह है, माता पिता के पास जाओ चलो। और यदि किसी ने कह दिया कि ये देह मेरी पत्नी का है, तो माता पिता आकर रोएंगे, इतना बड़ा किया, इतना मेहनत किया, भोजन कराया, खिलाया पिलाया, और कह रहा है कि तू मेरा नहीं है, आखिर ये देह है किसका? तो यहां पर उत्तर आ रहा है कि यह देह और किसी का नहीं, यह देह भगवान कृष्ण का है। इस देह के एकमात्र स्वामी कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है, जो इस देह के स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी है। विचार कीजिए, भगवान ने इतना सुंदर देह हमको दिया है। ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं भगवान की भक्ति न करो कोई बात नहीं, कम से कम यह तो सोचो भगवान ने कितना दिया है हमको। भगवान ने हमको जितना दिया है, कम से कम व्यक्ति वह याद कर ले तब भी भगवान की भक्ति करने लगेगा। सबसे पहले इतना सुंदर देह भगवान ने दिया जिसकी कोई कीमत नहीं आंक सकता है, अमूल्य। मैं आपको कहूं आप अपने दोनों हाथ काट कर यहां रख दो, 10 लाख रुपया दूंगा, कौन तैयार है? दोनों पांव काट कर यहां पर रख दो, हाथ पांव, 50 लाख रुपया दूंगा। एक मस्तक काट कर, अपना मस्तक काट कर यहां रख दो, 1 करोड़ रुपया दूंगा, कौन तैयार है? इसका अर्थ यही हुआ ना कि हमारा यह मस्तक 1 करोड़ का, यह हाथ 10 लाख के, फिर भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुल मिलाकर हम जोड़ेंगे तो इसकी कीमत कितनी अपार है। इतना अमूल्य देह भगवान ने हमको दिया। इतना ही नहीं, ये देह को चलाने के लिए भगवान ने हवा, ऑक्सीजन भी भगवान ही देते हैं। विचार करो, एक पल के लिए आप सोच लो कि यदि भगवान हमें हवा न देते, ऑक्सीजन न देते, तो ऑक्सीजन का बिल आप जानते हो? कभी हॉस्पिटल में जाओ और किसी को ऑक्सीजन की बोतल चढ़ाई हो और उसका बिल आता है, तब पता चलेगा कितना महंगा है ऑक्सीजन। भगवान ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, प्रकाश देते हैं, बिजली, ये सूर्य भगवान की कृपा है। यदि भगवान ये सूर्य रूपी प्रकाश हमें न देते तो बिल भर भर कर मर गए होते, लाइट बिल। सूर्य होते हुए भी इतना बिल आता है, कितनी कृपा। ये शरीर देह देते हैं, देह को चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, बुद्धि, सब कुछ भगवान देते हैं। परंतु उस भगवान के लिए हमारे पास 2 घंटे नहीं है कि उनको थैंक यू कहे। वैसे तो हम अपने आप को बहुत सोफिस्टिकेटेड मानते हैं, किसी का मोबाइल नंबर लिखना होगा तो पेन मांगते हैं ना, पेन दीजिए ना, और मोबाइल नंबर लिख लेते हैं और फिर वापस लौटाते समय क्या कहते हैं? थैंक यू कहते हैं, अपने आप को मानते हैं है? थैंक यू। अब छोटी सी रिफिल किसी की यूज कर दी एक नंबर लिखने के लिए, तो उसे थैंक यू कहते हैं। और जिसने ये शरीर, हवा, पानी, प्रकाश सब कुछ दिया, उसे थैंक यू कहने का समय हमारे पास नहीं है, नहीं। और भगवान को यदि थैंक यू कहना हो तो भगवान का थैंक यू कुछ अलग है, क्या है जानते हैं? हरे कृष्णा 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 राम राम, महामंत्र से थैंक यू कहना चाहिए। शरीर को देने वाले भगवान है, इसलिए भगवान को ऋषि के, इसलिए इस शरीर से हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। क्योंकि ये इंद्रिया भगवान ने हमको दी है। कुछ माता पिता कहते हैं, नहीं, यदि मैं न होता तो बेटा तू आज इस दुनिया में न होता, इसलिए मेरी सेवा करना ये तेरा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता को ऐसे लगता है कि हमने बालक को जन्म दिया। आपको पता न हो तो कह दू, इस संसार में कई ऐसे माता पिता है जो बालक पैदा करना चाहते हैं लेकिन होता ही नहीं है। यदि माता पिता के हाथ में ही होता तो बच्चे पैदा हो गए होते, लेकिन नहीं, संतान बच्चे नहीं हो रहे। और कुछ माता पिता ऐसे हैं जो नहीं चाहते तो 4-5 हो जाते हैं। ये सब भगवान के हाथ में है, भगवान दे रहे हैं। इसलिए इस शरीर के ऊपर सबसे पहला और बड़ा अधिकार कृष्ण का है, भगवान का है। इसलिए इसे ऋषि, इस इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यही है हमारा सबसे बड़ा धर्म। इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तम अपृच्छत ऋषिकेश। कृष्ण ने अक्रूर जी को पूछा, कीमते दृष्टम इव अद्भुतम। हे चाचा जी, आपने कुछ अद्भुत चीज को देखा? क्योंकि चाचा जी को लगा कि मैं जाकर बैठ जाऊंगा, ये बालक को कुछ समझ में नहीं आएगी, परंतु ये तो सब कुछ जान रहे थे। बोले, चाचा जी, अंकल, आपने कुछ तो हुआ है। बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं, कुछ तो अद्भुत चीज आपने देखी। आपने भूमि में कुछ अद्भुत देखा? वियति, आकाश में कुछ अद्भुत देखा? यह मुझे लगता है आपने पानी में कुछ अद्भुत वस्तु को देखा है। आपने क्या देखा? अक्रूर जी तो समझ ही गए थे। श्री अक्रूर वाच, अक्रूर जी ने कहा, अद्भुतानि इह यावन्ति भूमो वियति वा जले। प्रभु, क्या कहूं, इस संसार में जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे सभी अद्भुत वस्तु आप में हैं, और आपका दर्शन करने के बाद अब अद्भुत देखने के लिए क्या बाकी रह जाता है? प्रभु आपका दर्शन हो गया, मैंने सब अद्भुत वस्तु को देख लिया। वास्तव में कृष्ण जो है अद्भुत है। अरे केवल अक्रूर जी नहीं, 33 करोड़ देवी देवता जब कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, गर्भस्थ स्तुति करने गए, तब उन्होंने स्तुति की, तम अद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम, अद्भुत बालक। ये कैसा बालक था? अद्भुत। अद्भुत का अर्थ क्या है? ये ऐसा बालक बाले बाले ब्रह्मा प्रकटे। ये बालक कैसा है? जिसके एक एक बाल पर ब्रह्मांड प्रकटते हैं। अद्भुतम। अद्भुत का अर्थ होता है कि इस जगत के, इस भौतिक संसार के नियम से जो परे वस्तु है उसे अद्भुत कहते हैं। तो अक्रूर जी ने कहा, प्रभु जल में, स्थान में, आकाश में जितनी भी अद्भुत वस्तु सब आप में है, आपका दर्शन करने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। और इतना ही नहीं, यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भूमो व्यति वा जले। प्रभु आप इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तु में आप रहते हो, आपको देखने के बाद मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे तत्काल एक प्रभुपाद जी का एक वाक्य याद आ रहा है। प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं, कृष्णा इज सीड ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण जो है वे सभी वस्तु के बीज हैं। बीज, बीजम माम सर्वभूतानां। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन मैं सभी जीवों का बीज हूं। कुछ लोग तर्क करते हैं ना आपसे कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, तो हम बेचारे चुप हो जाते हैं, क्या बताएं इसको। और कुछ लोग कहते हैं ये वृक्ष पहले आया कि बीज पहले आया, गुठली पहले आई कि वृक्ष पहले आया, आम पहले। परंतु इसका उत्तर भगवान गीता में देते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, बीज सबसे पहले आया और सभी बीजों का बीज मैं कृष्ण हूं। इस संसार में सभी वस्तु के स्त्रोत्र, सोर्स कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को जानने से इस संसार में सभी वस्तु को जान सकते हैं। कृष्ण को यदि कोई समझ जाए, यद ज्ञात्वा नेह भूयन्तो, उसे फिर इस संसार में कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। तो कहते हैं कि हे प्रभु आप इस संसार के सभी वस्तुओं में हो। वास्तव में बहुत बड़ा सिद्धांत है, भगवान श्री कृष्ण 3 स्वरूप में इस संसार में विराजते हैं। भगवान एक है परंतु उनके 3 फेज है, जिसे इलेक्ट्रिक सिटी होती है ना, इलेक्ट्रिक सिटी एक है परंतु 3 फेज होते हैं उनके, न्यूट्रल, ग्रीन, रेड और ब्लैक, क्या कहते हैं उसे मुझे नहीं पता है। वैसे भगवान एक है लेकिन 3 स्वरूप है। भगवान का मूल स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण साकार स्वरूप से, द्विभुज रूप से अपने धाम में रहते हैं। वही भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी लोगों के हृदय में रहते हैं। और वही कृष्ण ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में रहते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस तत्वम यद्ज्ञानम अद्वयम, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। भगवान की 3 स्वरूप। इसलिए इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को मात्र ब्रह्म समझते हैं और वे चाहते हैं कि हम लोग ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म को मानने वाले गलत नहीं है। ब्रह्म ज्योति में प्रवेश होना चाहते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं, ये लोग गलत नहीं है, परंतु ये लोग का जो ज्ञान है अपूर्ण है। कुछ लोग भगवान को परमात्मा के रूप में मानते हैं, सबके हृदय में दृष्टा के रूप में, साक्षी के रूप में बैठे हैं, बस उसका ध्यान करें, ये भी गलत नहीं है परंतु ये अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान क्या है? कृष्ण को ब्रह्म के रूप में भी मानना, परमात्मा के रूप में भी मानना और कृष्ण को भगवान के रूप में। इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं अक्सर एक दृष्टांत देता हूं। एक गांव था और बहुत टिपिकल गांव था, पुराना, और उस गांव में रेल मंत्री की कृपा हुई और गांव से 10-15 किलोमीटर दूर ट्रेन की पटरी बिछाई गई, ट्रेन शुरू होने वाली थी। और दूसरे दिन उनका ओपनिंग था, शुभ मुहूर्त था। गांव वालों ने सोचा कि हम ट्रेन को देखेंगे, लेकिन किसानों ने बैठकर मीटिंग किया, यदि हम कल ट्रेन देखने चले गए तो खेती की सीजन चल रही है, कौन खेती करेगा। बोले तो क्या किया जाए। बोले काम करते हैं, हम में से 3 लोगों को भेजते हैं और वे लोग देखकर आएंगे और अपना अनुभव बताएंगे। 3 लोगों को चुना और 3 लोग तैयार हो गए। एक व्यक्ति इतना अधीर था, सुबह होने से पहले ही रात को 3 बजे निकल गया ट्रेन को देखने के लिए। तब रात को तो ट्रेन तो आ रही थी, परंतु रात को क्या होता है, ट्रेन की लाइट शुरू होती है बल्ब। तो उस व्यक्ति ने दूर से देखा, अरे ट्रेन माने प्रकाश। वहां से रिटर्न वापस आ गया, दूर से ट्रेन को देखा और अब अंधेरे में ट्रेन का मात्र वो लाइट प्रकाश देख पाया और वो वापस आया और गांव वालों को कहा, ट्रेन माने प्रकाश। कुछ लोग कहते ना भगवान माने ब्रह्म ज्योति। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपना अनुभव दिया, ट्रेन किसे कहते हैं, ट्रेन माने प्रकाश होता है, उसे ट्रेन कहते हैं। दूसरा व्यक्ति जो था वह सुबह 4-5 बजे तक पहुंचा, थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका था। दूर से ट्रेन आ रही थी, उसने ट्रेन को देखा तो दूर से डिब्बे जैसा दिखा और तुरंत वहां से रिटर्न हो गया। किसानों ने पूछा, ट्रेन कैसी होती है। बोले ट्रेन माने डिब्बा। तीसरा व्यक्ति था, वो थोड़ा धीर था, गंभीर था। वो ट्रेन को दूर से देखा, ट्रेन में लाइट भी है, करीब जाकर देखा तो वो डिब्बा भी था, लेकिन और करीब प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ गया और ट्रेन के अंदर गया तो देखा उसमें फैन भी है, विंडो भी है, सीट भी है। और वह तीसरा व्यक्ति किसानों के पास आया, पूछा ट्रेन माने। तीसरे व्यक्ति ने कहा, देखो ट्रेन में लाइट भी होती है, वो बाहर से डिब्बे जैसी दिखती है और अंदर से पंखा होता है, विंडो होती है, सीट होती है। अब बताइए, 3 लोगों ने अपना अनुभव दिया, इस 3 लोगों में से पूर्ण अनुभव किसका हुआ, पहले वाले का, ज्योति वाले का, डिब्बे वाले का, क्या तीनों जानने वाले का? इसी प्रकार भक्तों, जो लोग भगवान को मात्र ब्रह्म मानते हैं ये अपूर्ण है, ये ज्ञान अपूर्ण है। जो लोग भगवान को मात्र परमात्मा मानते हैं ये ज्ञान भी अपूर्ण है। परंतु भगवान को इस संसार के कण कण में ब्रह्म के रूप में देखते हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं और अपने धाम में साकार रूप से जो देखते हैं वही संसार में पूर्ण ज्ञानी है। तो इस प्रकार भगवान सभी कण कण में ब्रह्म के रूप में है। अक्रूर जी ने कहा कि आप तो प्रभु कण कण में हो, आपको देखकर कोई अद्भुत चीज रहती नहीं है। और अक्रूर जी ने बस सोच लिया कि अब तो ये भगवान है, अंदर भी दिखाई देते हैं, बाहर भी दिखाई देते हैं, कन्फर्मेशन। और फिर अक्रूर जी अपने रथ तेज गति से दौड़ाने लगे और इति उक्त्वा उदयामास स्यंदम गांधिनी सुत मथुराम। गांधिनी सुत, अक्रूर जी की मां का नाम गांधिनी था और गांधिनी के पुत्र अक्रूर जी अन्यद रामम कृष्णम च एव दिनात्यये मथुराम। दिनात्यये, दिन का अंत होने पर अर्थात 3-4 बजे की बात है, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर उस रथ को 3-4 बजे मथुरा में पहुंचे। जब अक्रूर जी मथुरा में पहुंचे मार्गे ग्राम जना राजन। ये परीक्षित, कृष्ण बलराम मथुरा में पहुंचे उसके पहले तो ब्रज में रहने वाले सब लोग मथुरा पहुंच गए। कृष्ण ने इतनी तेज गति से रथ चलाया और ब्रज वाले सब लोग, नंद बाबा और जितने भी गोप ग्वाल सखा सब थे, कृष्ण के पहले वे लोग मथुरा पहुंचे। दृष्टिम नच आददु, सब लोग कृष्ण के ऊपर दृष्टि करने लगे। प्रश्न हो सकता है कि ये कृष्ण के पहले कैसे पहुंचे, जंगल के मार्ग से गए होंगे, पहाड़ के मार्गों से तुरंत पहुंच गए। और जाने का कारण यही था कि कृष्ण को अकेले मथुरा में प्रवेश करने नहीं देंगे। ये कंस न जाने क्या क्या पैतरे किया होगा, क्या क्या कृष्ण को मारने के लिए प्लान बनाया होगा ब्रजवासियों ने सोचा। और खास करके कृष्ण के जो सखा थे, कृष्ण की जो टीम थी, अब मक्खन चुराने में और सब में जो पूरी टीम को लेकर जाते थे, वो टीम ने सोचा नहीं, देखो मक्खन खाया है साथ में, चोरी किया साथ में, डांट सुनी साथ में, और सबकी मार खाई साथ में, मरेंगे तो भी साथ में मरेंगे। सब लोग कृष्ण के पहले जाकर पहुंचे, कृष्ण की राह देख रहे हैं। और अब आगे चलकर कथा आएगी, कृष्ण अक्रूर जी को कहेंगे कि अक्रूर जी आप अपने घर पर चले जाइए, मैं मथुरा देखना चाहता हूं। अक्रूर जी मानेंगे नहीं, परंतु कृष्ण मना देंगे और कृष्ण फिर अपने मित्रों के साथ मथुरा की सैर करेंगे। मथुरा की सैर में भी अद्भुत से एक धोबी आएगा। कृष्ण ने सोचा कि अभी गांव के वस्त्र शहर में आए हैं, गांव के वस्त्र ठीक नहीं है। धोबी आया, कृष्ण ने धोबी को कहा एक काम करो, दो तीन कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े दे दो, शूट बूट, शहर में आए हैं तो पहनेंगे। धोबी ने कहा हम नहीं दे सकते हैं। अब धोबी ने सीधा सीधा ना कह दिया होता तो ठीक था, लेकिन अनेक श्लोकों में धोबी ने कृष्ण का अपमान किया। कृष्ण ने एक थप्पड़ खींचकर धोबी को मारा, गर्दन से गला, गले से ये मस्तक अलग हो गया, धोबी के दो टुकड़े हो गए, मर गए। ये आगे कथा आएगी विस्तार से। फिर धोबी तो मर गया और सब धोबी छोड़कर चले गए। कृष्ण ने जो टॉप वस्त्र था वो ले लिया, बलराम ने ले लिया, लेकिन वस्त्र तो राजा महाराजा के थे। कृष्ण ने वो वस्त्र पहना तो वो साइज थोड़ी बड़ी थी। अब विचार करने पर ऐसा लगता है कि वो वस्त्र वैसा ही लगा होगा जैसे माताएं रात को नाइटी पहनती हैं, वैसा वस्त्र हुआ होगा। कृष्ण ने सोचा फिटिंग ठीक नहीं है, और बिना फिटिंग वाला हम लोग कैसे पहने। फिर एक दर्जी के पास जाएंगे, फिर माली के पास जाएंगे, फिर कुबजा के पास जाएंगे, फिर कुबलिया पीड़ हाथी के पास जाएंगे, बहुत लोगों को मारेंगे काटेंगे, कृपा भी करेंगे। ये बहुत सुंदर कथा आएगी। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आप लोग इसी प्रकार आते रहिए, भगवत कथा सुनते रहिए। समय हो चुका है, और इसी प्रकार कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। आज के दिन के लिए यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर से मिलेंगे इसी स्थान पर इसी समय पर। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।